यशाया अध्याय 40। यशाया परमेश्वर के लोगों के लिए परमेश्वर का संपूर्ण नवीन संदेश लेकर आता है। ये परमेश्वर की नई वाचा है, अतः ये उचित ही है कि यशाया का ये भाग परमेश्वर के वचन से आरंभ हो कि परमेश्वर कहता है। यशाया अध्याय 40 पद 1 और 2। तुम्हारा परमेश्वर ये कहता है, मेरी प्रजा को शांति दो, शांति। यरूशलेम से शांति की बातें कहो और उससे पुकार कर कहो कि तेरी कठिन सेवा पूरी हुई है, तेरे अधर्म का दंड अंगीकार किया गया है। यहोवा के हाथ से तू अपने सब पापों का दूना दंड पा चुका है, अर्थात परमेश्वर के समाधान और मिलाप का दिन। यशाया अध्याय 40 पद 3। किसी की पुकार सुनाई देती है, जंगल में यहोवा का मार्ग सुधारो। हमारे परमेश्वर के लिए अराबा में एक राजमार्ग चौरस करो। आपको ध्यान होगा कि जब यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने अपनी सेवकाई का आरंभ किया था, तब अनेक लोग उसके पास यर्दन नदी में इकट्ठे हो गए थे। फरीसी भी यूहन्ना के पास आए थे और उन्होंने पूछा, तू कौन है? क्या तू एलिया है? उसने कहा, नहीं। क्या तू यरमाया है? नहीं। क्या तू मसीहा है? नहीं। तब तू है कौन? उस समय उसने धर्मशास्त्र के इसी अंश का संदर्भ दिया था, यूहन्ना 1:23। मैं, जैसे यशया भविष्यद् वक्ता ने कहा है, जंगल में एक पुकारने वाले का शब्द हूं कि तुम प्रभु का मार्ग सीधा करो। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने यशया की इस भविष्यवाणी का संदर्भ दिया। अतः हम एक नए युग में प्रवेश कर रहे हैं। ये नए नियम के युग की भविष्यवाणी है। यहां से आगे यशाया मसीह के आगमन की ओर ध्यान देगा। किसी की पुकार सुनाई देती है, जंगल में यहोवा का मार्ग सुधारो। हमारे परमेश्वर के लिए अराबा में एक राजमार्ग चौरस करो। यशाया अध्याय 40 पद 4। हर एक तराई भर दी जाए और हर एक पहाड़ और पहाड़ी गिरा दी जाए। जो टेढ़ा है वो सीधा और जो ऊंचा नीचा है वो चौरस किया जाए। परमेश्वर सब सुव्यवस्थित करेगा। वो घाटियों को समतल करेगा और पहाड़ों को गिरा देगा। वो टेढ़े मार्गों को सीधा करके सब सुव्यवस्थित करेगा। यशाया अध्याय 40 पद 5। तब यहोवा का तेज प्रकट होगा और सब प्राणी उसको एक संग देखेंगे, क्योंकि यहोवा ने आप ही ऐसा कहा है। यहां परमेश्वर उस दिन की घोषणा कर रहा है जब उसकी महिमा प्रकट होगी और सब प्राणी उसको देखेंगे। कैसा महिमा का दिन होगा वो! हम उस महिमा के दिन की कैसी प्रतीक्षा करते हैं जब यीशु लौट कर आएगा, जब प्रत्येक आंख उसे उसकी महिमा में देखेगी। ये इस नए भाग की प्रस्तावना है। अब वो मनुष्य की दुर्बलता और नश्वरता की तुलना परमेश्वर की महिमा और उसके सामर्थ्य से करता है। यशाया अध्याय 40 पद 6। बोलने वाले का वचन सुनाई दिया। ये वचन यशाया के लिए था। यशाया अध्याय 40 पद 6-8। प्रचार कर, मैंने कहा, मैं क्या प्रचार करूं? सब प्राणी घास है, उनकी शोभा मैदान के फूल के समान है। जब यहोवा की सांस उस पर चलती है, तब घास सूख जाती है और फूल मुरझा जाता है। निस्संदेह प्रजा घास है। घास तो सूख जाती और फूल मुरझा जाता है, परंतु हमारे परमेश्वर का वचन सदैव अटल रहेगा। मनुष्य घास की नाई है और वास्तव में जीवन है ही क्या, याकूब ने कहा, याकूब 4:14। तुम्हारा जीवन है ही क्या, तुम तो मानो भाप समान हो, जो थोड़ी देर दिखाई देती है फिर विलोप हो जाती है। लूका 12:28। मैदान की घास जो आज है और कल बाढ़ में झोंकी जाएगी। जीवन की अल्पकालीनता और नश्वरता एक फूल की नाई है जो खिलता है और सूख जाता है। यही जीवन है। मैं तो सूखने की अवस्था में आ चुका हूं। हम यहां कुछ समय के लिए हैं, फिर चले जाते हैं, परंतु एक चिरस्थायी वस्तु है परमेश्वर का वचन। यीशु ने कहा, मत्ती 24:35, आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे परंतु मेरी बातें कभी न टलेंगी। ओह, परमेश्वर के वचन का मूल्य और सामर्थ अनंत काल का है। एक पीढ़ी आएगी और चली जाएगी। इस प्रकार मनुष्य की पीढ़ियां चलती रहेंगी, परंतु परमेश्वर का वचन पीढ़ी से पीढ़ी तक स्थिर रहेगा। यशाया 40:9-10। हे सियोन को शुभ समाचार सुनाने वाली, ऊंचे पहाड़ पर चढ़ जा। हे यरूशलेम को शुभ समाचार सुनाने वाली, बहुत ऊंचे शब्द से सुना, ऊंचे शब्द से सुना, मत डर। यहूदा के नगरों से कह, अपने परमेश्वर को देखो, देखो प्रभु यहोवा सामर्थ दिखाता हुआ आ रहा है। वो अपने बुज बल से प्रभुता करेगा। देखो, जो मजदूरी देने की है वो उसके पास है, और जो बदला देने का है वो उसके हाथ में है। प्रभु का आगमन। यशाया 40:11। वो चरवाहे की नाई अपने झुंड को चराएगा। यहां प्रत्यक्ष है कि ये भविष्यवाणी यीशु के विषय में है। देखो, प्रभु यहोवा सामर्थ दिखाता हुआ आ रहा है। वो अपने बुज बल से प्रभुता करेगा। देखो, जो मजदूरी देने की है वो उसके पास है, और जो बदला देने का है वो उसके हाथ में है। यीशु ने कहा, प्रकाशित वाक्य 22:12। देख, मैं शीघ्र आने वाला हूं, और हरेक के काम के अनुसार बदला देने के लिए प्रतिफल मेरे पास है। ये कलीसियाओं को यीशु का संदेश है, क्योंकि वो चरवाहे की नाई अपने झुंड को चराएगा। यशाया 40:11। वो भेड़ों के बच्चों को अंकवार में लिए रहेगा, और दूध पिलाने वालियों को धीरे धीरे ले चलेगा। यीशु ने कहा, योहन्ना 10:11। अच्छा चरवाहा मैं हूं। अच्छा चरवाहा भेड़ों के लिए अपना प्राण देता है। वो चरवाहे की नाई अपने झुंड को चराएगा, तब वो उसके सामर्थ और उसकी महिमा की घोषणा करता है। यशाया 40:12। किसने महासागर को चुल्लू से मापा? पृथ्वी के विशाल सागर, एटलांटिक सागर, प्रशांत महासागर, उत्तर ध्रुवीय सागर, हिंद महासागर आदि को उसने चुल्लू में भर लिया। वो शोभायुक्त महान परमेश्वर है। इन सागरों पर से जब पायलट हवाई जहाज उड़ते हैं तो पता चलता है कि ये सागर कितने विशाल हैं, उनमें कितना पानी है। उसने तो उनको मापा हुआ है। उसने कहा, हम समुद्र बनाएं, कैसा महान और बहुत ज्यादा। यशाया 40:12। और किसके बीते से आकाश का नाप हुआ। आकाश मंडल का नाप। कुछ दिन पहले एक व्यक्ति मेरे पास आया और बोला कि उसने एक लेख पढ़ा है जिसमें लिखा है कि 50 अरब प्रकाश वर्ष दूर एक आकाश गंगा की खोज की गई है। मेरे मन में एक प्रश्न उभरा, आपको कैसे मालूम है कि उसकी दूरी 50 अरब प्रकाश वर्ष है? हो सकता है कि वो 49 अरब प्रकाश वर्ष ही हो। मेरे कहने का अर्थ यह है कि इतना दूर जाकर कैसे ठीक ठीक ध्यान रहेगा। ऐसे आंकड़ों का निर्णय लेने में बहुत अनुमान लगाना पड़ता है। एक अनुमान तो यह है कि प्रकाश की गति 86,000 मील प्रति सेकंड है। ये भी सही अनुमान हो आवश्यक नहीं है। प्रकाश की गति में बाधक अनेक परिवर्तन आ सकते हैं। भौतिक शास्त्र के कुछ दृष्टिकोण के अनुसार प्रकाश की गति स्थिर नहीं होती है। कहने का अर्थ यह है कि कल्पना की कमी नहीं होती है। जैसा भी हो, जब उसने मुझसे ये कहा कि उसने 50 अरब प्रकाश वर्ष दूर खोजी गई आकाश गंगा के समाचार को पढ़ा, तब मैंने कहा, वाह परमेश्वर तो और भी महान है ना, क्योंकि ये सब तो उसने अपने विते से नापा है। मैं परवाह नहीं करता वो कितना विस्तृत है, किसके विते से आकाश का नाप हुआ। आपका परमेश्वर कितना बड़ा है। ये अति महत्वपूर्ण है कि हमारी थियोलॉजी गलत ना हो, क्योंकि ऐसी स्थिति में हमारे सामने सदैव समस्याएं आती ही रहेंगी। ये जानना आवश्यक है कि परमेश्वर संसार में सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। परमेश्वर ने अपने बारे में इस पुस्तक में लिख दिया है। परमेश्वर इतना महान और इतना विशाल और इतना शक्तिमान और इतना विस्मयकारी है कि उसने समुद्र को अपने चुल्लू में मापा और बीते से आकाश को नापा हुआ है। यशाया अध्याय 40 पद 12 में आगे लिखा है, किसने पृथ्वी की मिट्टी को नपुए में भरा और पहाड़ों को तराजू में और पहाड़ियों को कांटे में तौला है। परमेश्वर ने पृथ्वी की मिट्टी को नपुए में भरा। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि इस पृथ्वी पर बालू के कितने कण होंगे? वैज्ञानिकों ने उनको गिना है और उनकी संख्या आकाश के सितारों के बराबर है। तब तो इब्राहिम को दिया गया परमेश्वर का वचन बड़ा ही रोचक है। इब्रानियों 11 अध्याय 12 पद, इस कारण एक ही जन से जो मरा हुआ सा था आकाश के तारों और समुद्र के तीर के बालू की नाई अनगिनत वंश उत्पन्न हुआ। परंतु सत्य तो ये है कि परमेश्वर ने आकाश के तारों और समुद्र की रेत की तुलना की है और उनका विश्वास ये है कि इनकी संख्या 10 को 25 गुना करने के लगभग है। पृथ्वी का भार और बालू के कण का भार लेकर उन्होंने एक सूत्र बनाया जिससे उन्हें ये ज्ञात हुआ। परंतु किसको मालूम कौन गिनता है? मैं फिर कहता हूं, कौन इन बातों की परवाह करता है? यशाया अध्याय 40 पद 13, किसने यहोवा की आत्मा को मार्ग बताया? मैं कहता हूं, मैंने कितनी बार परमेश्वर को मार्ग बताया? मैंने कितनी बार चाहा कि परमेश्वर के हाथ से लगाम ले लूं और परमेश्वर को समझाऊं कि उसे कैसे काम करना चाहिए? अब प्रभु तेरी समझ में आ गया, यदि तू ऐसा ऐसा करेगा तो सब ठीक होगा, और प्रभु बस एक घड़ी की तरह चलता जा। मैंने परमेश्वर को मार्ग बताने का प्रयास किया है, परमेश्वर की आत्मा को भी। यशाया अध्याय 40 पद 13। वह उसका मंत्री होकर उसको ज्ञान सिखाया है। ये सत्य है कि हम सब ने एक या दो बार ऐसा करने की कोशिश की है कि परमेश्वर को सिखाएं कि हमारे लिए सबसे अच्छा क्या है। यशाया अध्याय 40 पद 14। उसने किससे समिति ली और किसने उसे समझाकर न्याय का पथ बता दिया और ज्ञान सिखाकर बुद्धि का मार्ग जता दिया है। अब जब हम परमेश्वर की महानता और विशालता को समझते हैं और उसके सामर्थ और उसकी बुद्धि को भी, तो ये मेरी कैसी मूर्खता होगी कि मैं उसको सम्मति दूं और हमारी प्रार्थनाएं प्रायः छोटी मोटी जानकारी सी रह जाती है। अब प्रभु देख, मैं ये चाहता हूं कि तू जान ले कि क्या हो रहा है और मुझे ये पसंद नहीं है, और मैं परमेश्वर को समझाने लगता हूं। उन्होंने ऐसा कहा तभी मैंने ऐसे कहा है। आप जो परमेश्वर से कह रहे हो, क्या परमेश्वर पहले से नहीं जानता? परमेश्वर को समझ किसने दी है? परमेश्वर को निर्देश किसने दिए हैं? ऐसा करना ही हमारी हरेक कोशिश यही संकेत देती है कि हम परमेश्वर के अपार ज्ञान को समझ नहीं पाए। इसी कारण समृद्धि के सिद्धांत की उत्पत्ति हुई कि प्रत्येक को चंगाई मिलनी चाहिए, आदि सब मूर्खता है, क्योंकि ऐसे विचारों का परिणाम होता है कि मनुष्य कार चलाए और परमेश्वर दास के स्थान पर बैठा रहे और मैं परमेश्वर को बताता रहूं कि उसे क्या करना है और कैसे करना है। मैं परमेश्वर से आदेश लेने की अपेक्षा परमेश्वर को आदेश देता रहूं। परमेश्वर की इच्छा पूरी करने की अपेक्षा बल दिया जाता है कि मेरी इच्छा पूरी हो। इस तरह परमेश्वर की निंदा होती है। ये सोचना कि मैं परमेश्वर से अधिक ज्ञान रखता हूं या किस परिस्थिति में क्या करना है, या मैं जानता हूं कि मेरे लिए सबसे अच्छा क्या है, मैं वास्तव में कुछ नहीं जानता। यदि जानता हूं तो केवल यह कि मेरे लिए जो सबसे अच्छा है वो ये है कि परमेश्वर मेरे जीवन में अपनी इच्छा को पूरी तरह और अच्छी तरह पूरी करे। यही मेरे लिए सबसे अच्छा है। इससे अधिक अच्छा कुछ नहीं हो सकता। यशाया अध्याय 40 पद 15। देखो, जातियां तो डोल में की एक बूंद। यहां से अंग्रेजी की एक कहावत ड्रॉप इन द बकेट आई है, जिसका अर्थ है बाल्टी में एक बूंद की तरह। यशाया अध्याय 40 पद 15। या पलड़ों पर की धूली के तुल्य ठहरी। उन दिनों में वे सारे तौल तराजू में करते थे, उनके छोटे छोटे बाट होते थे। देखिए, नीति वचन में लिखा है कि परमेश्वर अलग अलग बाट पसंद नहीं करता है। कुछ धूर्त व्यापारी खरीदने के बाट अलग और बेचने के बाट अलग अलग रखते थे, जबकि उनका अंकित बार एक ही होता था। उनका वास्तविक बार एक दूसरे से अलग होता था। परमेश्वर ने कहा, मैं इन अलग अलग बाटों से घृणा करता हूं, और परमेश्वर इस बात से क्रोधित था। कुछ व्यापारी ऐसे चतुर होते हैं कि आपको दिखाने के लिए वे तराजू के पलड़ों की धूल भी झाड़ते थे कि आप उन्हें बहुत नेक समझे। आप कहें, मुझे आधा किलो बादाम देना, वो पहले तो तराजू से धूल साफ करेंगे। आप सोचेंगे कि वो इतना ईमानदार व्यक्ति है, मुझे धूल तो खरीदना नहीं पड़ रही, वो कैसी ईमानदारी से तौल कर मुझे दे रहा है, वो धूल तक हटा रहा है। अतः ये एक आम अभ्यास था कि तौलते समय तराजू की धूल उड़ा दी जाए कि आपकी ईमानदारी का प्रदर्शन हो। अतः यशया ने इस एक सर्व सामान्य उपमा का प्रयोग किया था कि लोगों के सामने एक अच्छा प्रयोगात्मक उदाहरण ठहरे, क्योंकि ये देखना उनका रोज का काम था। यशाया समस्त जातियों को परमेश्वर के सामने ऐसी धूल के समान बताता है, वो किसी को भी क्षण भर में इसी प्रकार उड़ा सकता है। देश जो शक्तिशाली और मजबूत है, जैसे कि अशूर तराजू में एक धूल के समान है, परमेश्वर उन्हें ऐसा फूंक मारेगा जैसा कि उनका अस्तित्व ही मिट जाएगा, और परमेश्वर ने ऐसा ही किया। उसके बाद आप कभी भी अशूर के बारे में इतिहास में नहीं पढ़ते हैं। यशाया अध्याय 40 पद 15 और 16। देखो, वो द्वीपों को धूली के किनको सरीके उठाता है, लेबनोन भी। उस समय लेबनोन में घने जंगल थे, यदि वे सारे जंगल काट भी दिए जाए तो भी। यशया अध्याय 40 पद 16 से लेकर 18 तक। ईंधन के लिए थोड़ा होगा और उसमें के जीवन जंतु होमबली के लिए बस न होंगे। सारी जातियां उसके सामने कुछ नहीं है, वे उसकी दृष्टि में लेश और शून्य से भी घट ठहरी है। तुम ईश्वर को किसके समान बताओगे और उसकी उपमा किससे दोगे? वो अब उन लोगों की उस भूल की ओर ध्यान आकर्षित करता है कि वे परमेश्वर का मूर्ति बना रहे थे। आप उसे किसके स्वरूप में बनाओगे? आप लकड़ी या सोना या चांदी लेकर उसको तरसना आरंभ कर देते हो। आप परमेश्वर के स्वरूप को कैसे तरसोगे? आप उसे क्या रूप दोगे? आप मूर्ति पूजकों की मूर्तियों को देखिए, वे कैसी कुरूप होती है। उन मूर्तियों के विचित्र चेहरे होते हैं, अनेक हाथ और पैर होते हैं। क्या परमेश्वर ऐसा दिखाई देता है? यदि आप परमेश्वर का रूप तरसने जा रहे हैं, तो आप किस प्रकार के परमेश्वर का रूप तरसने जा रहे हैं? यशया कहता है, यशया अध्याय 40 पद 19 और 20। मूरत कारीगर ढलता है, सुनार उसको सोने से मढ़ता और उसके लिए चांदी की सांकलो ढालकर बनाता है। जो कंगाल इतना अर्पण नहीं कर सकता, वो ऐसा वृक्ष चुन लेता है। यदि आपके पास सोने की मूर्ति बनाने के लिए पैसा नहीं है, तो आप जाकर लकड़ी ले आते और उसकी मूर्ति बनाते हैं। यशाया अध्याय 40 पद 20। ऐसा वृक्ष जो ना घुने, अर्थात उत्तम लकड़ी। यशाया अध्याय 40 पद 20। तब एक निपुण कारीगर ढूंढकर मूरत खुदवाता और उसे ऐसा स्थिर करता है कि वो हिल न सके, और कहता है, ये मेरा परमेश्वर है। यशाया अध्याय 40 पद 21 और 22। क्या तुम नहीं जानते? क्या तुमने नहीं सुना? क्या तुमको आरंभ ही से नहीं बताया गया? क्या तुमने पृथ्वी की नेव पड़ने के समय ही से विचार नहीं किया? ये वो है जो पृथ्वी के घेरे के ऊपर आकाश मंडल पर विराजमान है और पृथ्वी के रहने वाले टिड्डी के तुल्य है, जो आकाश को मलमल की नाई फैलाता और ऐसा तान देता है जैसा रहने के लिए तंबू ताना जाता है। परमेश्वर की महानता। आप परमेश्वर को क्या रूप देंगे और आप किस वस्तु को परमेश्वर के रूप में तरासेंगे? क्या आप नहीं जानते कि वो कितना विशाल, महान और विस्मयकारी है कि आप उसके रूप की नकल बना ही नहीं सकते? ध्यान दीजिए कि वो पृथ्वी की परिधि पर विराजमान है। बाइबल में ना तो कभी समतल पृथ्वी की शिक्षा दी गई है और ना ही वो ऐसी शिक्षा देती है। जैसा विचार उस युग में वैज्ञानिकों का था, परमेश्वर के जनों का नहीं। बाइबल ने कभी ऐसी शिक्षा नहीं दी कि पृथ्वी किसी हाथी या किसी कछुए की पीठ पर रखी है या एटलस ने उठा रखी है। ये उस युग के वैज्ञानिकों की शिक्षा थी। परंतु ध्यान दीजिए, आयुब क्या कहता है। आयुब अध्याय 26 पद 7, बिना टेक पृथ्वी को लटकाए रखता है, उसका ठट्टा उड़ाया गया। कैसे मूर्ख लोग, पृथ्वी गोल है। परमेश्वर का वचन तो कह चुका था और अंत में वैज्ञानिकों ने भी देखा कि ऐसा ही है। यशाया अध्याय 40 पद 23 और 24, जो बड़े बड़े हाकिमों को तुच्छ कर देता है और पृथ्वी के अधिकारियों को शून्य के समान कर देता है। वे रोपे ही जाते, वे बोए ही जाते। मेरे विचार में कुछ हाकिम न्यायाधीश खोखले ही होते हैं। क्या आपने कभी विदेशी पत्रिका लॉस एंजलिस में पढ़ा था? प्रभु हमें बचाए, लॉस एंजलिस हॉलीवुड में पार्लर बनाए हुए हैं जहां जाकर आप आधा घंटा अपनी पिटाई करवा सकते हैं। उसमें लिखा था कि उनमें बड़ी संख्या न्यायाधीशों की है। इससे आपको विश्राम मिलता है और अपनी पत्नी के साथ भोग विलास की उत्प्रेरणा मिलती है। परंतु उनके विचार में ये मिथ्या है। पर ध्यान देने की बात तो यह है कि आप आधा घंटा मार खाने के लिए पैसा देते हैं। यदि ये घृणित कार्य नहीं तो क्या है? उनके घमंड की बात तो यह है कि उनके अनेक अनेक ग्राहक लॉस एंजलिस में न्यायाधीश भी है। वे वहां सुबह जाते हैं और पिटने के बाद कोर्ट में आकर लोगों के जीवन की भावी निर्णय लेते हैं। परमेश्वर, मुझे तो लॉस एंजलिस की अदालतों से बाहर ही रखना। मुझे कभी कभी हबकुक का सा एहसास होता है। हे प्रभु, मुझे और कुछ मत दिखा, मुझसे सहन नहीं होता है। प्रभु, मैं जानना भी नहीं चाहता। अनभिज्ञता आनंदमय है। मैं न जानू तो अच्छा ही है, मैं तो इन बातों से विचलित हो जाता हूं। हबकुक ने कहा, प्रभु देख, सब का सब नाश हुआ जाता है और तू कुछ नहीं कर रहा है। प्रभु, अच्छा तो ये होगा कि मैं जान ही नहीं पाता। हे प्रभु, मुझे और मत देखने दे, मैं देखते देखते थक गया हूं। प्रभु, मुझसे देखा नहीं जाता। यशाया अध्याय 40 पद 24, उनके ठूंठ भूमि में जड़ ही पकड़ पाते कि वो उन पर पवन बहाता और वे सूख जाते और आंधी उसे भूसे की नाई उड़ा ले जाती है। पृथ्वी के हाकिमों और अधिकारियों को, यशाया अध्याय 40 पद 25, सो तुम मुझे किसके समान बताओगे कि मैं उसके तुल्य ठहरूं? आप परमेश्वर की तुलना किससे करोगे? आप परमेश्वर की तुलना का मापदंड क्या ठहराओगे? परमेश्वर के बराबर है कौन? सीमित और असीमित की तुलना हो सकती है? तुलना को कोई आधार है ही नहीं, इसका कोई मानक नहीं है। यशाया अध्याय 40 पद 26, अपनी आंखें ऊपर उठाकर देखो, किसने इनको सिरजा? वो इन गणों को गिन गिन कर निकालता, उन सब को नाम ले लेकर बुलाता है। बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर सितारों को उनके नाम से पुकारता है, और यदि 10 गुना 25 सितारे हैं तो याददाश्त कैसी तेज होगी। उनके नाम आम नाम नहीं है, परंतु उनके नाम अरेक्ट्यूरस आदि है। परमेश्वर उनका नाम लेकर उन्हें पुकारता है। आप उसके रूप को कैसा बनाएंगे? आप उसको किसके तुल्य ठहराएंगे? किसने ये सब बनाया? यशाया अध्याय 40 पद 26 और 27। वो ऐसा सामर्थी है और अत्यंत बली है कि उनमें से कोई बिना आए नहीं रहता। हे याकूब, तू क्यों कहता है? हे इसराइल, तू क्यों बोलता है, मेरा मार्ग यहोवा से छिपा हुआ है, मेरा परमेश्वर मेरे न्याय की कुछ चिंता नहीं करता? आप कैसे सोच सकते हैं कि आप परमेश्वर से छिप सकते हैं? आप कैसे सोच सकते हैं कि परमेश्वर आपका न्याय नहीं करेगा? यशाया लोगों से कह रहा है, हे इसराइल, तू क्यों बोलता है, मेरा मार्ग यहोवा से छिपा हुआ है, मेरा परमेश्वर मेरे न्याय की कुछ चिंता नहीं करता है? ऐसी बातें सोचकर इसराइली अपने आप को मूर्ख बना रहे थे। यशाया अध्याय 40 पद 28। क्या तुम नहीं जानते? क्या तुमने नहीं सुना? यहोवा जो सनातन परमेश्वर और पृथ्वी भर का सृजनहार है, वो ना थकता ना श्रमित होता है, उसकी बुद्धि अगम है। परमेश्वर की समझ, बुद्धि और ज्ञान को आंकने का कोई साधन है ही नहीं। वो सर्वदर्शी है, वो फिर भी कहता है कि, यशया अध्याय 40 पद 29, वो थके हुओं को बल देता है और शक्तिहीन को बहुत सामर्थ देता है। ये कैसी मन भावन बात है कि जगत की रचना करने वाला परमेश्वर मुझे शक्ति देगा और दुर्बलता में मेरी सहायता करेगा। प्रेरित पौलुस ने कहा कि उसकी एक दुर्बलता थी, परंतु उसने कहा कि उसकी दुर्बलता वास्तव में उसके परमेश्वर के पराक्रम के प्रदर्शन की महिमा थी। दूसरा कुरिन्थियों 12 अध्याय 9 पद, क्योंकि मेरी सामर्थ निर्बलता में सिद्ध होती है। अतः ये एक बहुत अच्छी बात है कि मैं अपनी दुर्बलता को पहचानूं, क्योंकि तभी जाकर मैं उस पर निर्भर होऊंगा और उस पर भरोसा रखूंगा। मैं जब तक ये सोचता रहूंगा कि मैं बलवंत हूं और मैं कुछ भी कर सकता हूं, सब कुछ संभल सकता हूं, चिंता मत कर, मैं सब देख लूंगा, तो आपको बता दूं, मैं विनाश की ओर जा रहा हूं। परंतु यदि मैं कहूं, हे मेरे पास तो कोई रास्ता ही नहीं, मैं कुछ कर ही नहीं सकता, घबराना नहीं, सुरक्षित अनुभव करो, क्योंकि मेरी दुर्बलता में उसका सामर्थ सिद्ध होता है। हमारा स्वभाव क्या है? जब कोई कहे, चिंता मत कर, मैं तेरे लिए प्रबंध लूंगा, मैं कर सकता हूं, तब हम सोचते हैं ये सचमुच व्यक्ति करेगा। ध्यान देना मेरे भाई, यही वो व्यक्ति है जो आंधी आने पर भाग खड़ा होगा। वो व्यक्ति जो अपनी अपेक्षा अपने परमेश्वर पर भरोसा रखता है, वही वो व्यक्ति होगा जिसके साथ आपको रहना है। इसी व्यक्ति के द्वारा अनंत परमेश्वर का सामर्थ्य प्रदर्शित किया जाएगा। वो शक्तिहीन को बहुत सामर्थ्य देता है, वह थके हुओं को बल देता है। यशाया अध्याय 40 पद 30 और 31। तरुण तो थकते और श्रमित हो जाते हैं और जवान ठोकर खाकर गिरते हैं, परंतु जो यहोवा की बाट जोते हैं, वे नया बल प्राप्त करते जाएंगे, वे उकाबों की नाई उड़ेंगे, वे दौड़ेंगे और श्रमित ना होंगे, चलेंगे और थकित ना होंगे, क्योंकि उनके भाग में परमेश्वर का सामर्थ है, वो उनको संभालेगा। यशया की पुस्तक के इस दूसरे भाग की ये प्रस्तावना है, बड़ी रोचक है। इन 27 अध्यायों को पढ़ने में बड़ा आनंद प्राप्त होता है कि भविष्य के लिए परमेश्वर ने क्या रख छोड़ा है। प्रभु आपके साथ हो, आपकी रक्षा करें और सुधि ले, और आपकी दुर्बलता में उसका सामर्थ्य सिद्ध हो। आप अपने जीवन में उसके कार्य एवं उसकी सहायता की प्रतीक्षा करना सीखें।